नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, आने वाली पीढ़ियां जल संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर करेंगी हमारा मूल्यांकन। केंद्र ने कहा, एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में बचाव और राहत कार्यों में जुटी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, ब्राजील भारत चीन यूक्रेन के साथ संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। ज्योति बरवाल ने स्पेन में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीट कई स्पर्धाओं में पदक के लिए करेंगे चुनौती पेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का विषय है। उन्होंने कहा कि एक प्रयास और पुण्य कार्य भी है, इस कार्य में उदारता भी और जिम्मेदारी भी। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संरक्षण पहल जल संचय जन भागीदारी के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सभी जल संरक्षण प्रयासों में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जब मूल्यांकन करेंगी तो पानी के प्रति हमारा दृष्टिकोण और उनका पहला मापदंड होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण हमेशा से भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने टिकाऊ भविष्य की दिशा में जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना सहित सरकार की कई पहलों पर प्रकाश डाला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में राज्यव्यापी जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत समूचे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संरक्षण निकायों का निर्माण सामुदायिक भागीदारी से किया जा रहा है। ये निकाय भूमि जल पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में कार्य करेंगे, जिनसे वर्षा जल संचय का दीर्घावधि जल प्रबंधन में मदद मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब भारत तथा भूमध्य सागरीय देशों के संबंधों को और मजबूत करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में भारत भूमध्य व्यापार कॉन्क्लेव 2024 में उन्होंने भारत और भूमध्य सागरीय देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने का आह्वान किया। श्री गोयल ने वैश्विक व्यापार के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए भूमध्य सागरीय देशों का आभार व्यक्त किया। श्री गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अपने बंदरगाहों का विस्तार कर रहा है और इसके विकास की गति तेज है। उन्होंने कहा कि भारत अपने युवाओं को उज्जवल भविष्य देना चाहता है। श्री गोयल ने कहा कि देश के विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत जापान डिजिटल संबंधों को मजबूत करने के लिए टोक्यो में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री तारो कोनो के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भविष्य की तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल क्षेत्र में सहयोग और नवाचार पर भी चर्चा की। इससे पहले श्री वैष्णव ने भारत जापान कूटनीतिक साझेदारी की वर्तमान स्थिति और भविष्य पर जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार मसाफुमी मोरी के साथ बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। वे आज पटना में इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। श्री नड्डा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे भाजपा राज्य कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 प्रचारकों की घोषणा की। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। बीजू जनता दल बीजेडी से सांसद सुजीत कुमार ने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे के बाद सुजीत कुमार दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इस बीच बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सुजीत कुमार को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले बीजेडी की ममता महंतो ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और हाल ही में संपन्न उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर फिर से चुनी गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और दीपक बावरिया के मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। इस अवसर पर सुश्री फोगाट ने कहा कि वह कांग्रेस में इसलिए शामिल हुई क्योंकि पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है और उनके संघर्ष के दौरान उनका समर्थन किया था। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वे पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली प्रमुख देवेंद्र यादव और नेता पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह राज्य मंत्री बडी संजय कुमार ने खम्मम जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और पलेरू में सागर बाई नहर में आई दरार का निरीक्षण भी किया। उन्होंने उन खेतों का भी दौरा किया जहां बाढ़ के कारण फसलें क्षतिग्रस्त हो गई थी। राज्य के कृषि मंत्री टी नागेश्वर राव और राजस्व मंत्री पी श्रीनिसा रेड्डी भी उनके साथ थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की चुनौती देने वाली संदीप घोष की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। घोष कोलकाता के इस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय जांच की निगरानी कर रहा है और जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। ऐसे समय में एक आरोपी के रूप में संदीप घोष को जनहित याचिका की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। घोष के वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि याचिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि अस्पताल में डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के साथ इसके संबंध पर सवाल उठा गया है। इस पर न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि दोनों पहलू जांच का विषय है। पिछले महीने की 23 तारीख को कोलकाता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह संदीप घोष के मेडिकल अस्पताल के प्रभारी रहने के दौरान हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे। आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व उप चिकित्सा अधिकारी अख्तर अली की याचिका पर कार्रवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच अदालत की निगरानी में होगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई अधिकारियों ने कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। 2 सितंबर को सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने घोष और 3 अन्य को हिरासत में ले लिया था। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने अगले दिन घोष को 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी वित्तीय अनियमितताओं और दुष्कर्म तथा हत्या के दोनों मामलों की समानांतर जांच कर रहे हैं। यह जांच अदालत के निर्देश पर और उनकी निगरानी में हो रही है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचक बल की टीमों ने 350 लोगों को बचाया है और लगभग 15,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्यों का आकलन करने के बाद गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल ने आज मीडिया को यह जानकारी दी। श्री जिंदल ने कहा कि भारतीय वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने 71,000 किलोग्राम खाना और राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास बुडामोरू नहर में आई दरार को भरने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति बहाल करने के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया है। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने भारतीय सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के 40 इंजीनियरों को नौसेना के N-32 विमान से हकीमपेट से विजयवाड़ा ले जाया गया। मौसम विभाग ने पश्चिम और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में अगले 4-5 दिन के दौरान हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 11 सितंबर तक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत, ब्राजील और चीन यूक्रेन संकट पर संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। पूर्वी आर्थिक मंच ईईएफ में एक सत्र को संबोधित करते हुए श्री पुतिन ने कहा कि ये तीनों देश यूक्रेन में स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन की स्थिति पर भारत, चीन और ब्राजील के साथ लगातार संपर्क में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन ने कर चोरी मामले के सभी 9 आरोपों में अपराध स्वीकार कर लिया है। इससे पहले हंटर बाइडेन ने 2016 से 2019 के दौरान 10,40,000 डॉलर का आयकर जानबूझकर न देने के आरोपों से इनकार किया था। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे को दोषी पाया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक में शिंजो आबे और भारत जापान मित्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की यादें ताजा हो गई हैं। ज्योति बरवाल ने स्पेन के पोर्टेवेद्रा में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कल पुरस्कृत शिक्षकों से बातचीत की है। केरल में ओणम उत्सव की आज कोची के पास त्रिथुनीपुरा में शुरुआत हो गई है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।